विश्वासियों के प्रेमी दयालु प्रभु, हम आज के दिन के लिए आपके आभारी हैं जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं स्वास्थ्य, शक्ति, जीवन, आयु सब कुछ आपकी देन है। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें बचा लिया है। आपने कल हमें आनंद दिया कि हम अपने बाहर भ्रमण के लिए जा सके। आने जाने में आपने हमारी रक्षा की। जो कुछ भी कल तक आपने हमें सिखाया, हम आपके आभारी हैं। और आज इस नए दिन, नए हफ्ते में हम प्रवेश करते हैं प्रभु। इस नए दिन में प्रवेश करते हुए अपने प्राण, आत्मा, देह, शरीर को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हमारे आप मददगार हों, हमारे आप सहायक हों, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपकी उपस्थिति की, हमें आपकी बुद्धि की, आपकी समझ की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु, वचन का प्रकाशन दीजिए। इस वचन के मन को आप तोड़िए और हमें तृप्त कीजिए, और हम सचमुच में और अधिक आपके वचन को प्राप्त करके आपके रूप में और आपके स्वरूप में बन सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सो मेरे साथ निकालिए मेरे मन से भजन संहिता 40, भजन संहिता 40। और मैं भाई सतीश से कहूंगा सामने आकर भजन संहिता 40 को पढ़े। सामने आकर भजन संहिता 40, भाई सतीश सामने आकर जोर से भजन संहिता 40 को पूरे अध्याय को पढ़ दें। पहले से पहले पद से लेकर 10 पद तक पढ़िए, फिर 11 से दूसरे दिन आए। पहले पद से लेकर 11 पद तक
मैं ध्याई से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहूं और उससे मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे विनाश के गाढ़े में से दलदल से के कीचड़ों से में से निकाला, और उसने मेरी पैरों को चट्टानों पर स्थिर करके मुझे मेरे कदमों को दृढ़ किया। उसने मेरे मुंह को एक नया गीत, हमारे परमेश्वर की स्तुति की गीत डाला। बहुत से लोग देखेंगे और यह भयभीत होंगे और यहोवा पर भरोसा रखें। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो भयभीमानियों और मृह में नील रहने वाला ही और नहीं, मुझको यहोवा मेरे परमेश्वर, जो अचय कर्म, जो विचार तूने मेरे हमारे लिए किया।
अच्छा ठीक है, बैठिए, कोई दूसरा पढ़ेगा। भाई राम से, क्या नाम से, राम कुमार पढ़ेंगे पांचों पास से। ठीक है, धन्यवाद। सो अभी आगे रह गया, पर हम बाद में पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 में पूरे 17 पद हैं। ठीक है, अभी हमने केवल 10 पद तक पढ़ा है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा भजन संहिता की पुस्तक को समझने का विचार करेंगे। भजन संहिता पुस्तक अक्सर भजन संहिता की पुस्तक को हम कहते हैं कि दाऊद का भजन, दाऊद के भजन, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, इसमें 150 अध्याय है और इस 150 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय जो है वो 119 अध्याय है। और बाइबल के जो विद्वान हैं उनके अध्ययन के अनुसार भजन संहिता 118 जो है पूरी बाइबल का केंद्रित अध्याय माना जाता है, केंद्रित अध्याय माना जाता है। अगर हम भजन संहिता का अध्ययन करना चाहते हैं, कई सारे तरीके हैं जिसका अध्ययन करने के लिए, लेकिन तीन मुख्य तरीके हैं जिसको हम अध्ययन के रूप में कर सकते हैं, कैसे हम पूरी भजन संहिता का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है, मेरी राइटिंग भाई जॉन मुर्मू की तरह नहीं है, जो पुस्तक है पुस्तक के विभाजन के द्वारा, अभी मैं बताऊंगा। पुस्तक का विभाजन पहले, अच्छा, फिर उसके बाद लेखकों के द्वारा कि कौन कौन लेखक इसके अंदर है, और तीसरा जो है वो विषय के द्वारा, विषय। ये तीन मुख्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम इस पूरी भजन संहिता का पुस्तक अध्ययन कर सकते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं। अगर हम पुस्तक विभाजन में जाएं, पहला पुस्तक विभाजन में जाएं, तो पुस्तक विभाजन को देखते हुए कि पहले से लेकर 41 अध्याय तक ये इसका जो मुख्य है, पूरा इन अध्याय का जो मुख्य कीवर्ड है, मुख्य शब्द है, वो मनुष्य है। मनुष्य, ठीक है। और ये अगर देखा जाए 5 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ये पूरी रीति से सृष्टि या उत्पत्ति की पुस्तक की ओर करता है, सृष्टि या उत्पत्ति की पुस्तक है, इसको आप कह सकते हैं। ये उत्पत्ति पुस्तक से संबंधित है, मनुष्य, ठीक है। दूसरा विभाजन है 42 अध्याय से लेकर 72 अध्याय तक, इसका जो मुख्य शब्द है वो छुटकारा है, डिलीवरेंस, छुटकारा। ये निर्गमन की पुस्तक से संबंधित है। अब समय नहीं है कि हम पूरा और भी विस्तार करें, लेकिन मैं कुछ आपके सामने डालना चाहता हूं। तीसरा विभाजन है 73 अध्याय से लेकर 89 तक, इसका जो है पवित्रता, ये लैवावस्था की पुस्तक से संबंधित है, लैवावस्था पुस्तक। फिर चौथा विभाजन जो है 90 अध्याय से लेकर 106 अध्याय तक है, ये जो है अविश्राम, ठीक है, ये गिनती की पुस्तक से है। फिर पांचवा है 107 से लेकर 150 तक, यह है इसका मुख्य है परमेश्वर का वचन, ये समस्त विवरण। तो 5 पुस्तकें हैं हमारी, पहली 5 पुस्तकें, इन 5 पुस्तकों के आधार पर इसका विभाजन किया। क्या मतलब है कि जब हम परमेश्वर के पुस्तक को कथन करेंगे, अगर आप ये ध्यान रखें तो अधिकतर सृष्टि के बारे में, और भी जगह छोटा छोटा है, लेकिन जो मुख्य चीज सब निकल कर आता है वो ये है, मनुष्य कैसे बनाया गया, क्या मनुष्य की स्थिति किस तरीके से। फिर 5 मुख्य विभाजन है पवित्रता के बारे में इस तरीके से। तो लेकिन अगर ऑथरशिप के बारे में देखें, ऑथर अगर हम लेखकों के बारे में देखें, तो 2-3 चीज मैं लिखवा सकता हूँ आपको, 2-3। जैसे दाऊद ने लिखा, दाऊद ने पूरा भजन नहीं लिखा, लेकिन दाऊद ने केवल 77 भजन लिखे, दाऊद ने लिखा, ठीक है, कुछ और करके लिखा है, समय नहीं जो हम इस पे जाए। अब सब्जेक्ट, मैंने विषय के बारे में बताया, लेकिन सुलेमान का उसमें एक भजन है, क्या नाम से, कुछ आसाफ के भजन है, इस तरह से अलग अलग भजन है, अभी मैं विस्तार में उस पर नहीं जाऊँगा। जब आप आगे बढ़ते हैं जैसे सब्जेक्ट के विषय में, जैसे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कम से कम 12 भविष्यवाणी ऐसी है जो उनके पूरे जन्म से लेकर मरण तक और मरण के बाद, मैं कोशिश करूंगा कि आजकल में पूरा मैं वो तैयार करवा के और टाइप करा के आपके हाथ में, सबके हाथ में दे दूँ ताकि मेरा समय बच जाए तो उस पर डिटेल में टाइप करा के मैं आपको पूरा वो दूंगा हिंदी में ताकि आप उसको ले आ सकते हैं और वो आपके जाने से पहले मिलेगा। लेकिन अच्छा है, कोई भी पुस्तक का हम अध्ययन करना चाहते हैं हमें उस पुस्तक के बारे पूरे पहले ध्यान रखना है कि क्या भजन संहिता को अक्सर बोलते हैं दाऊद का भजन, दाऊद का भजन, दाऊद का, दाऊद का पूरा भजन नहीं है। दाऊद ने कई सारे उन लिखने वाले कोई और थे, उसने गीतों गाया है, धुन दिए, उसका कोई और उद्देश्य था, कई अलग अलग समय में उसका उपयोग किया गया है ना। जैसे अगर क्या नाम से जब इसराइल लोग बदवाई में गए तो उस समय के किस प्रकार की पीड़ा में उन्होंने शामिल हुआ है। लेकिन दाऊद की पुस्तक एक ऐसा भजन है जो मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे अधिक उत्साहित करने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत अधिक भजन है जो आगे की ओर संकेत करते हैं, आगे की ओर संकेत करते हैं। और अभी इन दिनों में अध्ययन के लिए जो हम लोगों ने चुना है केवल एक भजन को छोड़कर जो मैं आज शाम को लूंगा, अधिकतर भजन वो है जो हिब्रू की पुस्तक से रिलेटेड है, इब्रानियों की पुस्तक से रिलेटेड है। आज जो भजन संहिता 40 को देखने जा रहे हैं, अध्ययन करेंगे, वो इब्रानियों की पुस्तक से रिलेटेड है। हम देखेंगे किस प्रकार से वो संबंध है। कितने बजे तक टाइम है मेरा? टाइम कितने बजे तक है मेरा? 10। ओह वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भजन का विभाजन है जो मैं हल्के में आपके सामने डाल रहा हूँ, लेकिन हम अपने उस भजन पर जाएंगे जिसको आज हम थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, भजन संहिता 40। आइए मैं साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 40, ठीक है, और उसको हमने पढ़ लिया, पूरा नहीं पढ़ा, मैंने किसी खास कारण से कुछ लोगों से पढ़ाया और भी 20 लोगों से पढ़ाएंगे। सो इसमें 1 से 17 पद है, कितने पद है? 1 से 17, ठीक है, भजन संहिता से हम अगर हम इसका पूरी रीत से इसका थीम देखें, थीम कहना चाहिए, पूरे 17 पदों का एक क्या बोलते हैं विषय देखें, तो वे विषय निकल कर आता है परमेश्वर संभालता एवं पालन करता है। परमेश्वर संभालता एवं पालन करता है ना, कि किस प्रकार से कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो। अभी हम देख रहे हैं दाऊद किस परिस्थिति में इस भजन को लिख रहा है, इस भजन को लिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये भजन हिब्रू के इब्रानियों की पुस्तक की ओर संकेत करता है जहां प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन इस पूरे 17 पदों का जो एक विषय निकल के आ रहा है वो ये है कि परमेश्वर किस प्रकार से, परमेश्वर हमारा पालन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है, ठीक है। हम चाहे जैसे भी स्थिति में होते हैं लेकिन हमारी निर्भरता अगर परमेश्वर के ऊपर होती है तो हमें इस रीति से वो हमें संभालता है। लेकिन इसमें 4 मुख्य शब्द हैं जिन शब्दों पर आधार पर पूरी रीति से ये भजन लिखा हुआ। पहला शब्द है पहले पद में प्रतीक्षा, पहले पद में verse 1 वेट। दूसरा शब्द है भरोसा, भरोसा 4 पद में, ठीक है। तीसरा शब्द है इच्छा, तीसरा शब्द है इच्छा 8 पद में। विल, और चौथा शब्द है खोजना, ढूंढना, वो verse 16 है। लेकिन इस जो पूरा भजन है, इस भजन किस परिस्थिति में दाऊद इस भजन को लिख रहा है, क्या वो अपने जीवन में महसूस कर रहा है, किस अनुभव के साथ होकर जा रहा है और कब वो पद वचन लिखा है। अगर आप वर्ष 12 को पढ़े, पढ़िए मन से पद 12 पद पढ़िए।
क्योंकि अनगिनत
बुराइयों ने मुझे घेर लिया है,
मेरे अधर्मों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है,
मेरे अधर्मों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है
कि मैं देख नहीं सकता।
हाँ, मैं देख नहीं सकता इस कंडीशन। हाँ यार ठीक है, पढ़िए। हाँ विक, हाँ
मेरे सिर के बालों में से कहीं बढ़कर है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया
है। वो इतना अधिक, अगर उसको कहा जाए तीन मुख्य शब्द, अगर उसके लिए कहा जाए, वो डिस्करेज है, डिस्ट्रेस है, डिस्टर्ब है, बिकॉज ऑफ हिज सिन, है ना। मतलब उसके स्वयं अपने जीवन में वो महसूस कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब दाऊद अपने जीवन में एक पाप के अनुभव में से होकर जा रहा था, पाप की व्याकुलता उसके जीवन बहुत बेचैनी को उत्पन्न कर रही थी, है ना, और उसी अनुभव में से होकर वो जाते हुए वो बहुत सारी बातों को देख रहा है। सो वो कह रहा है कि मेरे 12 पद में कहता है कि क्योंकि अनगिनत बुराइयों ने मुझे घेर लिया है, मेरे अधर्म ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है कि मैं देख नहीं सकता, मैं वे गिनती में मेरे बालों। और लेकिन उस सब कुछ के बीच में अपनी कंडीशन को देख रहा है, वो कंडीशन जो उसका डिस्ट्रेस है, जो उसका एक निराशा है, जो उसका हताशा है, वो देख रहा है। लेकिन उस हताशा में वो परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की धार्मिकता को देख रहा है। सो ये जब हम देखते हैं, अब हम थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर इसको आप विभाजित करें तो हम दो भागों में इसको विभाजित करते हैं, पूरे भजन को दो भागों में याद करते हैं। पहला है पहले पद से लेकर 10 पद तक, पहले से लेकर 10 पद तक, पहले पद से लेकर 10 पद तक, ठीक है। और यहां पर वो कहता है पर्सनल प्रेज उसकी, है ना, इज प्रेजिंग द लॉर्ड, व्यक्तिगत धन्यवाद। लेकिन 11 पद से लेकर 17 पद तक पर्सनल प्रेयर, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थना है, पुकार है परमेश्वर के साथ, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थना। पुकार कह दीजिए, प्रार्थना कह दीजिए, या क्राय कह दीजिए। सो इन दो भागों में हम इसको, पहला है व्यक्तिगत धन्यवाद, किस प्रकार से वो कराएं, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में वो कुछ और बातों कहना चाहता है। हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी अध्याय को मैं इस समय प्रीच नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे प्रीच करना होता तो मैं दूसरी तरह से प्रचार करता। हम जो इस समय अपने स्मृति में कर रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं कैसे हम किसी भी पुस्तक को या किसी अध्याय को हम बैठ कर सीख सकते हैं। तो हमें कई तरीके से देखना होता है। मान लीजिए ये एक, ये क्या है, ये डस्टर है, अच्छा डस्टर है, हाँ कोई और क्या कहेगा,
काला
है,
काले रंग
का है, और कौन क्या कहेगा,
चार कोने,
और कौन क्या कहता है, हैं बोलिए, जो से बोलिए,
प्लास्टिक
लगा है, और बोलिए। अब देखिए, अब 6 जनों ने अलग अलग चीजों को ऐड किया है, क्या मतलब है, यही होता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जब हम किसी पैसेज को, किसी अध्याय को, किसी चीज को छूते हैं, जितना अधिक हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना, जितना अधिक उतना अधिक हम उसकी चीजों को जानते जाएंगे। एक झटके में हमने कह दिया डस्टर खत्म हो गया, लेकिन अगर और ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं तो अभी पता चल रहा है कि काला रंग का है, ऐसे इस तरह से बना हुआ है, इसमें 4 कॉर्नर है, इसमें कपड़ा लगा हुआ है, मतलब कई सारी चीज ऐड होती चली जा रही है, ठीक है। सो जब परमेश्वर के वचन को हम सीखना चाहते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम सीखना चाहते हैं, तो सीखते समय हम किसी अध्याय को लेकर कई चारे तरह से हम देखना चाहते हैं उसको, ठीक है। लेखक कौन है, क्यों लिखा गया है, कब लिखा गया है, किस परिस्थिति में उसने लिखा है, क्या उसका विभाजन है, क्या उसके विषय निकल कर आ रहे हैं, क्या उसके बार बार उसके शब्द आ रहे हैं, जितना अधिक इसी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। और जब तक हमारा अवलोकन या ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज के लिए, किसी भी पैसेज के लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने इसीलिए कहा कि मैं एक्सपोजिशन नहीं ले रहा हूं केवल, है ना, एक्सपोजिशन ले रहा हूं तो शायद मैं दूसरी तरह से आपके साथ में प्रचार करता हूं, लेकिन हम सीखना चाह रहे हैं कि हम एक पैसेज को किस प्रकार से देखकर उसमें और समझ सकते हैं। सो अभी हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया, हमने इसमें चार शब्दों को देखा, इसमें चार शब्दों को अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, हमने उनको अगर विभाजन के रूप में देखा तो देखा, ठीक है, कुछ कुछ और चीजों को हम देखते चले जाएंगे कि किस प्रकार से कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप फिर बैठ के पढ़ेंगे तो फिर बैठ के पढ़ने के बाद देखेंगे कौन कौन से शब्द निकल कर, बहुत सारे इसमें ऐसे शब्द हैं जिस पर विचार करने द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आइए अब हम क्या नाम से इस अगर पद को देखेंगे तो एक पद पहले पद से लेकर तीन पद तक के अंदर इस पर कुछ बात है, ठीक है। फिर दूसरे को देखेंगे तो चार पद से लेकर पांच पद तक आ रहा है, तीसरे को देखेंगे तो छह पद से लेकर पंद्रह तक आ रहा है, ठीक है। फिर चौथे को देखेंगे तो सोलह और सत्रह पद आ रहा है, ठीक है। अब ये लेकिन एक चीज को बताया, मैंने बोला था कि ये वर्ष बारह पद हमने इसको देखा था कि किस प्रकार से, ठीक है, परमेश्वर संभालता है, पालन करता है, यद्यपि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो डिस्ट्रेस है, परेशान है, व्याकुल है, हताश समय है, लेकिन फिर भी उन सारी परिस्थिति में वो जान रहा है कि परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पालन करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि अगर परमेश्वर पालन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर की चाहना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मनुष्य से चाहता क्या है, है ना, ये भी वो देख रहा है और उसका भी वर्णन करता है, उसका भी वो करता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हमने पूरे अध्याय के दो डिवीजन करे थे, कौन कौन से थे, कौन से पद से लेकर एक से दस पद तक पहला, और यह था कि व्यक्तिगत धन्यवाद, ठीक है। अब जब वो यहां कर अब आइए पढ़ेंगे हम, हे पर मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, पहली बात, ठीक है, मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा। सच में क्यों वो कहना चाह रहा है कि मैं क्यों परेशान है, व्याकुल है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है, कह रहा है, और उसने मेरी ओर झुककर दुआएं सुनी, उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल के कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर करके मेरे कदमों को दृढ़ किया। पहली बात वो कह रहा है, कह रहा है, और इसलिए मैंने कहा था कि पहला भाग जो प्रेस का है ना, किस प्रकार से वो उस अपने अनुभव को देख रहा है। आपको मतलब भजन संहिता 30 में क्या कहता है, भजन संहिता 30 और 1-2 में किसको याद है, पढ़िए मैं वहां से पहला भजन संहिता 30 और 1-2 साम 30 वर्स 1 एंड 2 हाँ,
तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है,
तूने मुझे
खींच कर निकाला है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया।
यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ क्या कह रहा है दूसरे पद में, उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से दलदल के कीचड़ से निकाला, ठीक है। उसके जीवन में एक अनुभव था, पाप में गिरा हुआ रहना उसके लिए क्या था, एक दलदल में फंसने और धंसने के समान। मैं अक्सर अपने मैंने अपने लोगों को दो एक बार बताया अपने जीवन के अनुभव के बारे में। मैं गांव में पढ़ा हूँ, गांव के स्कूल में जाता था, छोटा धारीदार पट्टा वो पजामा वो पहन करके, और मुझे हाथ में पटिया और वो तख्ती और पटिया लेके चूट क्या चंदन घोटी और आकर के वो घोटते थे, सब कुछ करते थे। तो उसे और मुझे याद आता है जब मैं वचन पढ़ने लगा तब बाद में मुझे अपना उस अनुभव याद आया, और एक बार मैं गांव के अपने स्कूल में जाता, मुझे 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल जाता, और बारिश होती थी, नहर थी, नहर के बाद कच्चा रास्ता था, और एक बार ऐसी मैं चला रहा था, मुझे नहीं मालूम था, हाथ में बस्ता था, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा वहां पर दलदल था और मेरा पैर कीचड़ में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। और मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को निकालने के लिए, लेकिन उस कीचड़ से मैं, तो दूसरा पैर मैंने जोर लगाया कि मैं इससे निकलूं, ये भी धंस गया। अब ये दोनों पैर, व्यवहारिक सच्चाई के साथ बता रहा हूं, दोनों पैर मेरे धंस गया। मैं उस सीन को आज तक नहीं भूलता हूं। और तब उसके बाद मुझे सीखने को मौका मिला। तब एक व्यक्ति वहां से आ रहा था, बुजुर्ग आदमी था, मैं जोर से चिल्लाया, मैंने उनको बुलाया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और तब उसने मुझे खींच कर निकाला। मैं उस अनुभव को जानता हूं। दाऊद एक पाप के जीवन में कह रहा कि मैं ऐसे ही से मैं प्रयास तो कर रहा था लेकिन मैं और धंस था। मैं उस समय के बारे में सोच रहा था कि जब मैं कोशिश कर रहा था अपने प्रयास को, एक दर्द जोर लगा था, कोई दर्द पैर दर्द था, जो भी वो अंदर ही जा रहा था कीचड़ के अंदर, क्योंकि बहुत कीचड़ था। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर तूने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे खींच कर रखा। ये उसका अनुमान जरूर, वो कह रहा है कि जरूर मैं ऐसी स्थिति में था, मैं धीरज से, वो कह रहा है कि मैं बाढ़ जोता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। जब मैं पाप में था मैं प्रतीक्षा करता किस प्रकार से कोई मेरी सहायता करते, किस प्रकार से कोई मुझे बचा ले, किस प्रकार से कोई मुझे, उसका ये अनुभव है। और इसलिए तब उसके हृदय का एक आनंद बढ़ गया। तब वो आगे चल के कहता है, उसने मुझे विनाश के दलदल से निकाला, मेरे पैरों को चट्टान पर स्थित करा, कदमों को दृढ़ करा, उसने मेरे मुंह में एक नया गीत हमारे परमेश्वर की स्तुति के लिए डाला है। बहुत से लोग देखेंगे और भयभीत होंगे, यह पर भरोसा रखेंगे। देखिए मेरा पाप से छुटकारा पाया जाना क्या कारण होगा, दूसरे लोग भी क्या करने पाएंगे, यहोवा पर भरोसा रखने पाएंगे। एक विश्वासी, एक प्रभु का जन, जब हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, पाप ये है, ये सच्ची साक्षी, ये सच्ची साक्षी कि अगर जीवन में परिवर्तन है तो प्रभु किस प्रकार से वो हमारा परिवर्तन, हमारा छुटकारा जाना परमेश्वर की महिमा काम बनता है और दूसरे लोगों को भी वो प्रभु के लिए खींचता है दूसरे। लेकिन प्रार्थना के उत्तर के लिए वो प्रतीक्षा करता रहा कुछ समय तक, ठीक है आने वाले। तब उसके बाद चौथे पद में कहता है, क्या ये धन है वो जो यहां पर भरोसा रखता है। ट्रस्ट शब्द, धन शब्द, आज हम शाम को जब दूसरे अध्याय में देखेंगे दूसरे में तमाम धन शब्द पर कुछ और विचार करेंगे। लेकिन पांचवा पद कह रहा है, यहोवा मेरे परमेश्वर, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आशीकर्म और जो विचार तूने हमारे लिए किए हैं वो बहुत है, तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि मैं खोल कर उनकी चर्चा करूं तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब ये परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, इसीलिए हमने कहा था पहला जो भाग है वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। वो उन उपकारों को देख रहा, साम 40 वी आर स्टडीइंग इन द मॉर्निंग, साम 40 वर्सेस फ्रॉम 1-7। सो वो पूरी से उन बातों को देख रहा, अपने उस अनुभव में होकर जा रहा है, किस अनुभव में से परमेश्वर उसको लेकर गया है, परमेश्वर से वो प्यार करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, है ना। और उस पाप से छुड़ाए जाने के कारण उसका हृदय आनंदित है। वो परमेश्वर पर कहता है कि चाहे कैसी परिस्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, धन है वो जो यहाँ पर भरोसा रखता है, ठीक है। लेकिन 6 पद से लेकर, जिसमें हम थोड़े देर ठहरेंगे, 6 पद से लेकर 6 और 7 पर थोड़ी देर ठहरेंगे, 6 और 7 इसको पढ़िए, ये इस पर हम ठहरना है, पढ़िए मैं बस।
मेहरबानी और अन्य बल तूने चाही तो तूने मेरे कान खोल कर खोले हैं।
फिर से पढ़िए मैं बस।
मेहरबानी और अन्य बल तूने ना चाहे,
हाँ
तूने मेरे कान खोल कर खोले हैं,
हाँ
होम बलि और पाप बलि की मांग तूने नहीं की।
हाँ
तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, पुस्तक में मेरे विषय यही लिखा है।
ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है मेल बलि और अन बलि तूने ना चाही, ठीक है। कल आपके सामने भाई विनोद ने उन बलिदानों के बारे में रखा था, जो 5 बलिदान हमें सिखाए गए थे लेव व्यवस्था में, जिनका पूरा वर्णन है पहले अध्याय से लेकर 5-6 अध्याय तक पूरा उनका, एक एक बलिदान का। और बलिदान आराम से, पर वो कह रहा क्यों नहीं तूने बलिदान चाहा। तो वो कह रहा तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि की मांग तूने नहीं की। मेरे कान, दो बातें, बलिदान ना चाहा। दूसरी बात, कान खोद कर खोले हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो इब्रानियों उसका दसवां अध्याय में आइए, इब्रानियों उसका दस अध्याय, पांच से सात पद तक, किस प्रकार से यहां पर हम इन पदों को देखते हैं, पढ़ी मेला से। अब यहां पर वर्णन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है उसका।
इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा,
हाँ,
तो तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है,
हाँ,
तू होम बलियों से, बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ,
हाँ,
तब मैंने कहा कि परमेश्वर देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया
हूं,
पुस्तक में मेरे विषय एक लिखा हुआ है।
ठीक है, अब ये सच में बार बार परमेश्वर के वचन में यद्यपि बलिदान की व्यवस्था थी, लेकिन बलिदान मनुष्य को छुटकारा ना दे पाया, है ना। लेकिन क्या चीज छुटकारा दे पाई, क्या चीज छुटकारा दे पाई, समझ रहे। अगर आप पहले शैमन में जाएं तो आपको मालूम चले पड़ेगा, मेहरबानी से निकालिए पहला शैमन, उसका पंद्रह अध्याय, पहला शैमन उसका पंद्रह अध्याय और बाईस, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सॉरी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ी बात। क्या पर यहां पर मारा है, पा रहे हम आज्ञा और फिलिपियों उसका दो अध्याय पढ़ी मैं से, फिलिपियों उसका दो अध्याय, निकालिए मरम से और उसका पांच पद से पढ़िए मरम से।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो,
हाँ आगे पढ़ते जाइए।
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा,
हाँ,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया,
हाँ,
और दास का स्वभाव धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया,
हाँ,
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया,
हाँ,
और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा,
यहाँ तक कि
आज्ञाकारी
रहा कि
क्रूस की मृत्यु भी सहे,
ठीक है। सो तूने बलिदान ना चाहा, लेकिन क्या चाहा, आज्ञा पालन। और हिब्रू में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आकर अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए वो स्वयं बलिदान होता है, ठीक है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, दाऊद जीवन में अगर पश्चाताप कर रहा है तो पश्चाताप करने मतलब क्या है, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी है। दूसरी बात, तूने मेरे कान खोद कर गया, और इस पर आए हैं मेरे कान खोद कर खोले हैं, क्या मतलब है कान खोद कर खोले। जब हम पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं तो वह पुरानी व्यवस्था में निर्गमन, अगर आप देखेंगे तो निर्गमन में उसका 21वां अध्याय, निर्गमन पढ़िए 21वां अध्याय और उसका 6 पद, निर्गमन उसका 21वां अध्याय 6 पद।
तो उसकी उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास भेजने,
हाँ,
उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर, हाँ, उसके कान में सुतारी के छेद करे,
उसके कान में क्या करे, छेद करे। ये क्या था, ये उस समय की व्यवस्था थी कि उसको सेवक को एक बंधुआ के स्लेव के रूप में बनाना, ये उसको, ठीक है। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, दाऊद यद्यपि कर रहा है लेकिन एक प्रोफेसी है जो परमेश्वर के उस बात कर रहा है, उसने एक मसीहा प्रॉफिट मैसेज क्या करना चाहिए, एक मसीह के लिए भविष्यवाणी के रूप में आत्मा में होकर बोल रहा है, ठीक है, कि यीशु मसीह वो क्या नाम से परमेश्वर का जन होगा, जो इस प्रकार से उसका जीवन होगा, जो एक सेवक के रूप में है, प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा सेवक बना, कान खोद कर खोले गए हैं। क्या मतलब है उसका? अर्थात उसने अपने आप को परमेश्वर का सेवक बनाया, परमेश्वर का दास बनाया, उसकी अधीनता में हुआ है, उसके अधिकार में हुआ, ठीक है, ऑनर के लिए। लेकिन कान खोल कर खोलने का मतलब एक और पद है जिसको हम देखते हैं, जो परमेश्वर के सुनने से संबंधित है। कि परमेश्वर, अगर आप यशाया पढ़ेंगे, यशाया उसका 50 अध्याय, यशाया 54, 50 अध्याय उसका 4 पद है, पढ़ी बाबा से।
प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं ठगों को अपने वचन से संभाला ना जानू।
क्या संभाला? संभालना, संभालना ना जानू,
संभालना जानू।
हाँ, तो वो आपने तोड़ दिया, संभालना ना, गलत हो गया। जब हम इसीलिए वचन को पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना है, हिंदी आपने संभालना ना कर दिया, गलत है वो, अर्थ बिगड़ गया, गलत हो गया। संभालना जानू, एक साथ करके संभालना जानू,
संभालना जानू,
हाँ।
प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी
है
कि मैं ठगों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है।
मेरा कान खोलता है क्यों?
कि मैं शिष्य के समान बनूं,
मैं शिष्य के समान बनूं। सो शिष्य के समान सुनो, बनूं नहीं, सुनना है। सुनने के बारे में देखिए, एक चीज को ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, ये हमारी बात है, आप हाथ रखिए, जब मुंह पे जमाई आती तो ठीक है ना। सो घर में बैठकर, घर में बैठकर या साथ दो जन बैठकर मुंह खोल के पढ़ना सीखिए। जब आप बाइबल को हमेशा मुंह बंद करके पढ़ेंगे, आप उच्चारण कभी सही नहीं सीखेंगे, हिंदी का उच्चारण कभी सही नहीं सीखेंगे। लेकिन जब आप आवाज के साथ पढ़ेंगे, आपको आवाज, और अच्छा है कि पुस्तक को आवाज के साथ पढ़ना सीखे, जरूरी है। अकेले से को इस बात को सीख लीजिए कि क्योंकि आप सामने खड़े होते हैं, अगर आप ही सही नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी मंडली को आप क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए, जब आप अकेले रहते हैं तो बाइबल को खोल करके और किताब खोल करके ऊंचे शब्द पढ़िए। आप ऐसा करेंगे, आपके उच्चारण में फर्क आएगा और सुधार होगा, ठीक है। तो अब वहां पर सुनने की बात है, किसके नाय? एक सेवक के नाय, और दूसरा क्या है?
शिष्य,
ठीक है। अब यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, थोड़ा सा इनको समझिए। वो कह रहा है, मेल बलि और अन बलि तूने ना ही चाहिए, ठीक है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि की मांग तूने नहीं की। तीसरी बात, मैंने कहा, देख मैं आया हूं, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है, पुस्तक में मेरे विषय, तीसरी बात, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है, ठीक है, पुस्तक। अगर आप निकालेंगे, मेरे पास दूसरा राजा उसका 22 अध्याय 13, दूसरा राजा 22 अध्याय 13 पढ़ी मैं बस। ये हाँ ठीक है, पढ़िए।
जाओ जो पुस्तक मिली है उसके वचनों के विषय में।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बात। यर्मिया 6:10। अच्छा पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसको पहले कंप्लीट करिए। क्या नाम से? दूसरा राजा 22:13, फिर यर्मिया 6:10 में जाएंगे। मंदिर के उसकी सफाई की जा रही थी, तब वहां पर एक पुस्तक पाई गई थी, है ना। उससे पहले यरूशलेम को नाश कर दिया गया था, बहुत उजाड़ गया सब कुछ, तब ये जब पुस्तक लाई गई तो उसमें देखा कि क्या लिखा हुआ, और उस पुस्तक पे यही व्यवस्था की पुस्तक थी, ये व्यवस्था की पुस्तक थी, और तो उस पे भी वहां लिखा है, इस पुस्तक में उसके विषय में, हमारे विषय में लिखा है। अर्थात आदि से, उत्पत्ति से जो कुछ भी चला आ रहा है, परमेश्वर ने उसको अपने वचन में लिखवा दिया, वचन में। अभी इब्रानी यहाँ आकर के इब्रानी 10 पे पढ़िए, इब्रानी 10 जो हमने पढ़ा था वो पढ़िए मैं से, इब्रानी 10 5 6 7
इस कारण वह संसार में आते समय कहता है सूर्य बलदान और मेरे को ना जहां परंतु मेरे लिए एक देह तैयार की है,
मेरे लिए एक देह तैयार की है हाँ
पढ़ मैंने कहा हे परमेश्वर देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ गया हूँ
हाँ
पुस्तक में मेरे विषय में यह लिखा हुआ है
हाँ
उपयुक्त कथन भी है
पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा हुआ है ठीक है किस प्रकार से ये परमेश्वर का वचन जो है वहाँ पर कोट किया जा रहा है और जैसे रेवरेंड रॉबिन थॉमसन भी इस बात को बता रहे थे कि इब्रानी की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे ज़्यादा भजन संहिता को कोट किया गया है बार बार क्योंकि भजन संहिता में जब दाऊद और दूसरे भजन को लिख रहे हैं तो उनको परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया और वो आत्मा ना केवल उन परिस्थितियों से बात कर रहा है उन परिस्थितियों के साथ भी सब कुछ लिख रहा है जो उसके जीवन में होके जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर उनको उपयोग कर रहा है कि उन सारी घटनाओं के द्वारा वो आने वाले चीज भविष्य के लिए जो होने वाला है उसके लिए वो भविष्यवाणी कर सके भविष्यवाणी कर सके और इसीलिए जब दाऊद इस परिस्थिति में है एक और वो अपने जीवन के बारे में देख रहा है ठीक है लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर अब इसको समझने की कोशिश करें क्या इस परिस्थिति में दाऊद के साथ क्या संबंध हो रहा है दाऊद कह रहा है मैं पाप में हूं मैं ऐसी परिस्थिति में हूं लेकिन तूने ना तो बलिदान चाहे ना कुछ चाहे लेकिन तूने चाहे कि आज्ञाकारिता उस आज्ञाकारिता में अपने बारे में कह रहा है कि उस आज्ञाकारिता में तेरी आज्ञा यह है कि मैं अपने पापों को तुझसे मान लूं और उसको छोड़ दूं आपको मालूम उसने सुलेमान को सिखाया था कि जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया ये उसका अपना व्यक्तिगत संबंध है लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में एक और उसके साथ बात काम कर रहा है अपने आत्मा द्वारा भविष्य की आने वाली की बात उठा रहा है क्या मतलब है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि तब ये बलिदान की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन एक दूसरा बलिदान होगा जो देह के रूप में तैयार होकर आएगा और ये देह के रूप में कौन है यीशु ये यीशु की ओर संकेत कर रहा है ये यीशु की ओर संकेत कर रहा है कि वो देह तैयार होकर आएगी और तब वो बलिदान जो अभी तक किया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन एक आज्ञाकारिता की जरूरत पड़ेगी और उस आज्ञा पालन में होकर वो अपने आप को सारे मनुष्य के लिए बलिदान करेगा क्योंकि पुस्तक में उसके लिए लिखा पुस्तक में उसके लिए लिखा सो जब हम भजन संहिता 40 को पढ़ते हैं तो भजन संहिता इस बात को हमेशा ध्यान रखिए जब आप एक्सपोजिशन में जाते हैं इसीलिए क्या नाम से बाइबल को पलटने की जरूरत होती है केवल आप बाइबल को एक लेकर आप मूल से आप बाइबल को नहीं सीख सकते शायद उसको भी जरूरत है ये तो अच्छा है आईबीपी की जो बाइबल है मछली वाली बाइबल जो है मछली वाली बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इसमें नहीं है मतलब बहुत मछली बाइबल है अगर आप कुछ एक बात रखें लेकिन शायद पुस्तक को रखना जरूरी है और जब शायद पुस्तक को रखना जरूरी है इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए उस पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है उस पर अवलोकन जितना गहराई से करें आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे समय थोड़ा सा है तब उसके बाद यहां पर कहता है 8वें पद में हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बसी रहती दाऊद दाऊद अपने लिए कह रहा है कि मेरी व्यवस्था तेरे हृदय में बसी रहती लेकिन किसने सबसे अधिक परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया यीशु मसीह ये फिलिपियों के दूसरे अध्याय में हम 5 पद से लेकर 8 पद पढ़ते हैं कि वो आज्ञाकारी रहा और उसने क्रूस की मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु से उसने अपने पिता की पूरी क्योंकि पिता की ये इच्छा थी कि मेरे और आपके पापों के छुटकारे के लिए बलिदान पूर्ण बलिदान यीशु मसीह का हो सके ठीक है तब आगे चलते देखिए अब कुछ शब्द है जिस पर वो वर्णन कर रहा है मैंने विश्वास सभा में धार्मिकता का सभा सुना है हे यहोवा तू जानता है मैं अपने होठों को बंद नहीं रखता, मैंने तेरी धार्मिकता को अपने हृदय में गुप्त नहीं रखा, मैंने तेरे सच्चाई और तेरे उद्धार की चर्चा की है, मैंने तेरी करुणा और तेरी सत्यता को विशाल सभा में छिपाए रखा। पहले पद से लेकर 10 पद तक वो प्रशंसा कर रहा है उसकी धार्मिकता के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसके करुणा के बारे में, उसकी सत्ता, मैंने तेरी करुणा। सो जब हमने पहले से 10 भागों को, पहले अध्याय से लेकर सॉरी पहले पद से लेकर 10 पद तक हमने पहले भाग में बांटा था, तो हमने क्या देखा था? दाऊद की प्रशंसा पूरी से, जो अनुभव को उसने पाया है कि जिस प्रकार से बलिदान उसको छुटकारा नहीं दे सके, कोई और चीज उसको छुटकारा देगी, लेकिन आज्ञा पालन उसको छुटकारा दे सके। उसने अपने जीवन में छुटकारे का अनुभव किया, ठीक है, वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर उस पर दया की, ये सारी चीज उसका अनुभव किया। तो पहले से 10 अध्याय तक के, लेकिन जब हम क्या नाम से 11 पद से आते हैं, अध्याय नहीं अध्याय, तो 11 से लेकर 17 पद तक एक और भजन में हम इसी इन्हीं पदों को पाते हैं। अगर हम भजन संहिता 40:11-17 है, अगर आप भजन संहिता 70 भजन संहिता 70 देखें और 1-5 भजन संहिता 70:1-5 अच्छा पढ़ दी ठीक है।
परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए,
हाँ।
जो कहते हैं आ आ वे अपनी लज्जा के मारे उलट फेरे जाए, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए पूर्ति कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर।
ठीक 11-12 पद को छोड़ दें तो 13-17 पद तक जो वर्णन कर रहा है, ठीक यही चीज यहाँ पर हम पाते हैं, वही रिपीटेशन है भजन। और भजनों में बहुत जगह आप ऐसा देखेंगे, बहुत जगह देखेंगे जहां दाऊद एक विचार को एक जगह रख रहा है, वही आपको दूसरे भजनों में नहीं है। इस चीज को खोजना बहुत जरूरी है, उस अनुभव में उनकी डाला है। लेकिन आप आइए अब यहां 11 और 12 पद थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे। 11 और 12 पद में, हे यहोवा तू मुझ पर तरस खाने से ना रुक, मेरी तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हमने क्या दूसरे भाग में रखा था, दूसरे भाग को क्या देखा था हमने? व्यक्तिगत प्रार्थना, ठीक है। और ये 11 पद प्रार्थना से उत्पन्न कर रहा, आरंभ कर रहा है। पहला पद धन्यवाद से उत्पन्न कर रहा है, प्रेस करा परमेश्वर की, उसकी प्रशंसा करना चाह रहा है कि जिन्होंने उसके ऊपर प्रतीक्षा की है उनकी दुआएं सुनी गई है, उन पर परमेश्वर अनुग्रह किया है क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाह। लेकिन अब यहां पर सो क्रम में हम उल्टा देख रहे हैं थोड़ा सा, क्रम में पहले प्रार्थना होनी चाहिए फिर धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन क्या ये सही है ना? जब हम प्रार्थना में भी जाते हैं तो पहले धन्यवाद का आत्मा हमारे अंदर आना, ठीक है ना? तो क्योंकि वो उस अनुभव को याद कर रहा है जिसमें से होकर गया है, जिसमें से होकर गया, और उस अनुभव को याद करते हुए वो परमेश्वर की महानता को देख रहा है। उसने सचमुच में ना केवल उसकी सृष्टि की है, लेकिन ना केवल उसको संभाला है, लेकिन वो निरंतर उसका पालन कर रहा है। अब 12 पद से लेकर 11 पद से लेकर वो अपनी प्रार्थना को आरंभ करता है। प्रार्थना में कहता है, यहोवा तू मुझ पर तरस खाने से ना रुक, तेरी करुणा और तेरी सत्य सत्ता है निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। 12 पद क्या कह रहा है वो 12 पद? ठीक, अब देखिए, अब हम इसको इन पदों को थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। 11 से 12 पद अभी छुटकारे के लिए प्रार्थना है, जिसकी प्रार्थना दया और सत्यता। कई बार दाऊद ने भजन को लिखते हुए है ना, उसकी ज्योति, उसकी सत्यता, उसकी करुणा, बार बार उसने इन शब्दों को रिपीट किया है, बार बार इन शब्दों को रिपीट किया है। और अच्छा हो कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो इन शब्दों पर ध्यान देकर उसको करें। क्यों कह रहा है कि उसकी दया, उसकी 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 सत्यता, दो बातें, ठीक है। स्थिति क्या उसकी स्थिति, वो पाप की स्थिति है, स्थिति उसकी पाप की स्थिति है, क्या नाम से, और इस स्थिति में अनगिनत बुराइयों ने उसको घेर रखा है ना, उसको जकड़ लिया है, ठीक है। उसकी गिनती में कह रहा है कि बालों से भी बढ़कर है, और ऐसी स्थिति में वो कह रहा है मेरा हृदय टूट गया, असहाय अपने आप को। तब ऐसे समय में उसको उसकी करुणा और दया की स्मरण आ रही है। मेरे प्रियो, सचमुच में ये एक परमेश्वर का मेरे ऊपर और आपके ऊपर अनुग्रह है कि जो परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की जो सत्यता है उसकी तुलना में संसार में किसी ने नहीं। सत्यता इसलिए रीति से है कि परमेश्वर सत्य है और सत्यता के साथ हम व्यवहार करना चाहता है ना, हम उसे कुछ छिपा नहीं सकते। दाऊद कुछ रीति से उसे छिपाना नहीं चाह रहा, लेकिन करुणा इसलिए क्योंकि चाहे हम कितनी भी कैसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर हमारे ऊपर निरंतर करुणा करके तैयार रहता है। तब आगे चल के वो क्या कह रहा है, 13 पद में, वो 13 पद में कहता है कि हे यहोवा कृपा करके। मैं जब इस पर पढ़ रहा था तो मुझे उस पर शब्दों पर बहुत अच्छा लग रहा था, इस प्लीडिंग ना, इस प्लीडिंग है ना, कह रहा कृपा करके, है ना, क्या मतलब है, मतलब इसीलिए वो अपने आप को आगे चलकर कहता है कि मैं तो निर्धन, क्या बोलता है, मैं दीन और दरिद्र हूँ। दरिद्र क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहा है, दीन और दरिद्र, गरीब नहीं था वो, तो राजा था, सब कुछ था, लेकिन वो अपने आप को ऐसी स्थिति महसूस कर रहा है कि अब इस संसार में कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं। अगर कोई सहायता कर सकता तो केवल एक सहायता करता है, वो कौन, केवल परमेश्वर। ये दाऊद के हृदय के टूटेपन को दिखा रहा है, दाऊद के हृदय को नम्रता को दिखा रहा है, दाऊद के हृदय को कि एक परमेश्वर की निर्भरता और समान को दिखा रहा है। जो चार शब्द हमने ज्यादा छुए नहीं है, लेकिन अगर उस पर विचार करें तो चार शब्द ऐसे हैं इस भजन के अंदर जो सबसे पहले हमने देखा था। कौन से चार शब्द थे, जो प्रतीक्षा है, ट्रस्ट है, उसके बाद क्या नाम से उसकी इच्छा है और उसका खोजना है ना। इसीलिए वो कहता है कि कहता है जितने तुझे ढूंढते, कौन ढूंढेगा, घमंडी उसको नहीं ढूंढेगा, धनवान उसको नहीं ढूंढेगा, जिसके अंदर जो अपने आप को बड़ा सब नहीं ढूंढता, जो दीन और दरिद्र वही उसको ढूंढेगा। हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि दाऊद के अंदर वो दीनता है, वो नम्रता है जिसने उसके जिसके कारण उसने अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में कर दिया, परमेश्वर के अलावा और कुछ। लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर ने उसकी छुटका, उसको छुटकारा दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन पूरे अध्याय में जो मुख्य बात निकल कर आती है, वो मुख्य बात निकल कर आती है, वो ये संकेत दे रहा है कि न केवल मेरा छुटकारा, लेकिन आने वाले दिनों में जो लोगों को छुटकारा मिलेगा वो उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, जो सच में उसके जीवन को आप अध्ययन करिए, उसकी शिक्षा को आप अध्ययन करिए तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी उसी उसमें से होकर गया जो दीनता और नम्रता उसके अंदर पाई गई, दीनता नम्रता, और परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। लेकिन एक और बात को हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, अब आइए थोड़ा सा 14 पद में अपने जीवन को किस रीति से बदल कर रहा है। जो मेरे जीवन को नाश करने की खोज में रहते हैं वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले, और जो मेरी हानि से प्रश्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। क्या आज हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं, बताइए, क्या आज हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं, जो क्या कह रहा है, मेरे जीवन को नाश करने की खोज में रहते हैं उनको क्या करो, उनके वो लज्जित हो जाए, उनके मुंह काले हो जाए, कैन यू प्रे, हैं, बोलिए।
नहीं
क्यों? अच्छा वो भी परमेश्वर के बनाए लोग हैं और
अपने शब्दों से प्रेम और वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना
करो। वेरी गुड, क्योंकि वचन हमें कुछ और सिखाता है। अब हम व्यवस्था में नहीं है, अब व्यवस्था में नहीं है ना, व्यवस्था से हटकर अब हम परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा में है और उस करुणा को परमेश्वर ने सबके ऊपर प्रकट किया है। उस करुणा को परमेश्वर ने सबके ऊपर प्रकट किया है। दाऊद जब बात कर रहा है, लिख रहा है, वो उस समय व्यवस्था को ध्यान में रखे हुए, और व्यवस्था में ये था आग के बदले आग, दांत के बदले दांत, ठीक है ना। लेकिन अब व्यवस्था में अब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान को नहीं, उसने वो बलिदान और ये सारी चीज नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सबसे बलिदान है, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करा। अब परमेश्वर की योजना यह है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो परंतु सबको उद्धार का जीवन का अनुभव। पहले परमेश्वर दंड, हमेशा दंड देने की तैयार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा अब दंड से हम बचाए गए और हर एक के लिए समान अवसर है कि वो छुटकारा प्राप्त कर सके, हर एक के लिए समान अवसर है कि वो पश्चाताप कर सके, हर एक के लिए समान अवसर है कि वो बचाया जा सके, ठीक है। सो इसलिए दाऊद ने उस समय, तब आगे चल के दाऊद कहता है कि जो अपने जीवन का अनुभव कर रहा है, क्या नाम से वो विस्मित सब कुछ है, लेकिन 16 पद वो कह रहा है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तुझ में आनंदित और मग्न हो। बलिदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हो गया है, अब और बलिदान की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन पूरा हो चुका है, परमेश्वर ने क्या नाम से वो जो वचन कान खोद कर खोलने के थे या उसको दास के रूप में रहकर यहाँ पर सेवा करना था, आज्ञाकारी था, वो सब पूरे हो गए। लेकिन अब जितने तुझे ढूंढ रहे हैं, जितने तेरे उद्धार को प्रिय जानते हैं, वे सब निरंतर कहें यहोवा की बड़ाई हो। देखिए ये उसकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर है पाला। सो जब हम दाऊद के भजनों पर विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो जरूर दाऊद व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है, उसने कई सारी चीजों कहा, लेकिन हमेशा दाऊद के भजनों में एक विशेषता पाई जाती है कि वो यूं चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और जब कई बार बहुत ज्यादा मतलब व्याकुल होकर पता नहीं क्या क्या बातों को कह रहा है, लेकिन फिर वो यहां पर आया, जहां से आरंभ करता है वहां पर आता है। क्या मतलब है? उसका सोच जो है वो फिर वापस आकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। मानवीय रीति से वो इधर होता है, लेकिन फिर सोच पर। परंतु मेरे भाइयों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भजन संहिता 40 जो परमेश्वर का भजन है, वो दाऊद के उस अनुभव का भजन है जो उसके पाप के ऊपर था, लेकिन उसके लिए उसमें एक आशा है, आशा से भरा भजन है, और वो आशा जो है वो आज्ञाकारिता के द्वारा पूरी हुई है, जो महान बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये भजन संहिता 40 में पाते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर समाप्त। कोई प्रश्न आपके सामने पूछना है? कोई प्रश्न आपके सामने पूछना है? नहीं है तो मैं एक बात कुछ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं समूह में, कल परसों लोग बात कर रहे थे और हमने इस बात पर विचार किया था कि हम उसको थोड़ा सुनेंगे। जब हम अध्ययन, ठीक है, किसी भी, अब यह विषय थोड़ा सा दाऊद से भजन से हटकर, किसी भी स्थल को जब हम अध्ययन करते हैं या किसी भी अध्याय का अध्ययन करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना, अवलोकन का तरीका बहुत सही होना चाहिए। अगर अवलोकन, अवलोकन का मतलब क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, तीन चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, तीन चीजें हैं। इनको बहुत अधिक मैं समूह रीति से लेना चाह रहा हूं इसको, क्योंकि हम ग्रुप में करें, कई बार ग्रुप में लोग कुछ समझ नहीं पा रहे और मैंने बातचीत कर ली है, और इसलिए ये तीन चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन, इंग्लिश में बोला था। ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं अवलोकन, हिंदी में अवलोकन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, और फिर तीसरी चीज एप्लीकेशन लागू करना। जितना शुरू में बोला आप इस सिस्टम को, अभी हम केवल एक वजन को लेकर चल रहे हैं, हमने आगे पीछे मैंने समय को बचाने के लिए बहुत सारे रेफरेंस को, क्रॉस रेफरेंस को नहीं दिया, केवल एक वजन से था 30 के रेफरेंस को दिया। लेकिन हर पद का अगर आपको क्रॉस रेफरेंस देखना जाए तो वजन में बहुत सारे आपको मिलेंगे, क्या नाम से बहुत सारे, मैंने आपको वजन से था 37-7 में, वैसे से था 130-5-6 में, वजन से 25-40 कहते हैं, बहुत सारे मैंने रेफरेंस लिख रखे हैं लेकिन मैंने उनको नहीं खुलवाया। पर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब एक स्तर को या किसी वजन को कोई आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो आपको अवश्य है कि एक एक पद को देखकर, पद के साथ, शब्द के साथ, जितना गहन आप अवलोकन में जाएंगे उतना अधिक आप उस स्थान को समझ नहीं पाएंगे। कई बार हम लोगों का अवलोकन सही नहीं होता है, इसलिए कि हम, लेकिन जब आप भजन के अलावा दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरी पुस्तकों के अध्याय में आए, जैसे मरकुश कल का परसों शायद आप पढ़ रहे थे या पढ़ रहे थे, उसमें आपको इस तरह के साथ साथ काय में जाना पड़ेगा, आपको अध्याय में जाना पड़ेगा, अध्याय के साथ आपको जाना पड़ेगा पुस्तक में जाना पड़ेगा, पुस्तक के साथ आपको जाना पड़ेगा बाइबल। ये बहुत जरूरी है ना, केवल स्थल को समझकर आप पूरी चीज नहीं समझने पाएंगे, लेकिन हर स्थल अध्याय से रिलेटेड रहता है ना। अगर मान लीजिए आपने मरकुस 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1:36 में आई थिंक 44 या ऐसे कुछ अध्याय पद है, 44 ऐसे कुछ है पद। अगर आपने यहां से आपसे 12 पद से लेकर 25 पद तक पढ़ने के लिए आपको कहा, और आप अगर केवल इतने का देखकर आप एकदम से आपने कुछ विषय निकाल लिया प्रचार करने का, शायद आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो पद है उस पद में इसका विषय छिपा हुआ है, इसका मुख्य विषय छिपा हुआ है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, है ना, ये केवल चंगाई वहां पर नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को दिया गया, ठीक है। अगर आप इस अध्याय के साथ साथ इस पुस्तक के और पीछे पढ़ेंगे, पहले अध्याय को और आगे पीछे पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा, जैसे रॉबिन थॉमसन अंकल ने उस दिन बताया था, आपको मालूम चलेगा कि इसका क्या हुआ है, तो आपको मालूम चलेगा कि अरे बार बार एक शब्द आ रहा है वो अधिकार से संबंधित है, अधिकार को संबंधित है ना। तो तब आप, तो कोई भी आप घर में जब या स्थल पर यहां पर करें, अभी जब पैसेज दिए जा रहे हैं, कई बार पैसेज को भी हम एकदम से शुरू करते हैं, अभी तो हमने केवल यहां से निकाल के करा, लेकिन अगर इब्रानी को और अगर आप पढ़ेंगे, हमने कम पढ़ा है, अगर आप आगे पीछे पढ़ेंगे उसमें है, 8वें पद से अगर आप पढ़ें, चलिए एग्जांपल के लिए मैं इसी को लेता हूं आपसे, इब्रानी 5:10 अध्याय का उदाहरण खींच से, अब हमने केवल 8 पद तक खत्म कर दिया था, लेकिन 8 पद काफी नहीं है 5वें दिन, अगर आप इसको और समझना चाहेंगे तो क्या लिखा हुआ है देखिए, इब्रानी 10 पद, क्योंकि मैंने पढ़ा है बैठकर, 10 अध्याय का 8 पद में खत्म करा हमने, उपरोक्त कथन यह है कि, कथन यह है कि कहने के पश्चात तूने बलिदान और भेंट होम बलियों और पाप बलियों को न चाहा और न उनसे प्रश्न हुआ, यह व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए थे, तब उसने कहा देख मैं क्या आ गया हूं तेरी चपूरी करूं, वो पहले को हटा लेता है और दूसरे को स्थापित करता, पहले किसको हटा लेता है, व्यवस्था को हटा दिया, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को स्थापित किया, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने द्वारा हम पवित्र किए गए, हम पवित्र किए, ठीक है। सो वो पूरा जितना आगे बढ़ेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे कि केवल प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा और क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, और क्या क्या व्यवस्था भी प्रभु ने हटाया, अब बार बार बलिदान भी नहीं हुआ है, ये सारी चीजें, और तब वो कहता है कि इस इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह एक बार सदन, तब 11 पद, प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता, तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता है बार बार चाहता है, परंतु ये याजक पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़कर परमेश्वर के दाने जा बैठा। अब प्रभु यीशु मसीह ना केवल बलिदान हुआ लेकिन स्वयं याजक भी है और उसके साथ अब परमेश्वर के दाने हाथ भी बैठा। सो मेरा कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी पुस्तक को स्थल को समझने के लिए केवल इसके अंदर मत रहिए, आपको क्या करना होगा, आपको बाहर भी निकलना होगा। यही हमारा एसबीटी का उद्देश्य है, एसबीटी का उद्देश्य है कि आप समझ सकें। सो परमेश्वर साथ करे, हमने केवल मैंने कहा ना कि मैंने टीचिंग नहीं करी है, हमने भजन को कुछ समझने की कोशिश करा। शाम को हम भजन संहिता 84 पर विचार करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा अलग हटकर है प्रभु यीशु मसीह के मतलब हमारी यात्रा के बारे में कि हमारी भविष्य की यात्रा कहाँ की, हम उस पर समझना चाहेंगे। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें, हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। 10 बजे से क्या है, अभी चाय का समय है, ठीक है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। अगर इस झुंड में हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं और आपके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी आपको जानता है, अभी भी कोई ऐसा जन है जिसने सच्चे मन से सच्चे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, यदि आज भी उसका पाप का जीवन उसको सोटता है काटता है, जैसे दाऊद भजन संहिता 40:42 में 12 में कहता है कि मेरे पाप मुझे व्याकुल करते रहे, पाप का जीवन आपको कसोटता और काटता है, तो आपके लिए अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुख्य याजक है, वो बलिदान हो चुका है, आप उससे से एक सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं और पाप से छुटकारा पाकर उसकी करुणा उसकी सत्यता में आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए अवसर है। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं भजन संहिता 40 के इस अनुभव के लिए, दाऊद की इन शिक्षाओं के लिए, दाऊद के उस अनुभव के लिए जो दाऊद एक आत्मा में होकर प्रभु ना केवल अपनी वेदना को प्रदर्शित कर सका है लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु वो आपकी ओर संकेत कर सका है, क्योंकि आप वो महान और सिद्ध बलिदान हमारे लिए बन गए जिसके द्वारा हमारे पाप सदा के लिए मिटाए गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी आज्ञाकारिता के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सेवक बनने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके दास बनने के लिए। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपने अपने आप को दीन और दरिद्र किया, आप हमारे लिए कंगाल बन गए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि हम आप में होकर धनी किए जा सकें, हम आपकी नम्रता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके महान बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके चरणों में गिरते झुकते आपको दंडवत करते आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम कहना चाहते हैं प्रभु आप महान हैं, आपने ना केवल हमारी सृष्टि की है लेकिन आज भी वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह आप हमें संभाल रहे हैं, आप हमारा पालन कर रहे हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम और अधिक आपके प्रति कृतज्ञ होकर आप पर निर्भर होते हुए आप पर भरोसा करते हुए जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु आप पर आपकी दया आपकी करुणा आपकी सत्यता निरंतर हमारे ऊपर पाई जा सके, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। ओके थैंक यू।